किंतु अधिकतर लोग वृंदावन में मधुबन में वृंदावन के गंगा का परिक्रमा करना गोविंद जी की सेवा करना है इस सब काम में वो रहते हैं। एक समय में वो एक वर्ष के लिए यहाँ पर पधारे और यहाँ पर प्रतिज्ञा की संकल्प क्या है द्वादशी का उपवास करेंगे, यहाँ पर एकादशी पूर्ण हो एकादशी को उपवास किया जाए, दसवीं मिल जाए तो उसको मत करो और यदि द्वादशी मिल जाए तो और सुंदर है, इसलिए वो शुक्ल एकादशी या द्वादशी मिली हुई एकादशी का वो करते थे। आज सारे का दिन था एकादशी समाप्त हो गई, एकादशी को कर दिया पूरा निर्जला और वो बैठे और पारण करने वाले थे। पारण एकादशी के बाद में यदि समय पर द्वादशी के अंतिम चरण तक एकादशी के अंतिम चरण तक द्वादशी के तिथि के अंदर में पारण नहीं करेंगे तो वो गड़बड़ हो जाता है, क्या गड़बड़ उसका फल दूसरा चरण देंगे, इसलिए उचित समय पर पारण नहीं करना चाहिए। तो वो पारण करने के लिए तैयार थे, उन्होंने ब्राह्मणों को खिलाया, पहले तो ठाकुर जी का पूजन किया, ब्राह्मणों को खिलाया, भक्तों को दिया, गायें और जो कुछ दान करना था वो सब कुछ दान किया। अब वो पालन करने वाले थे खुद, इतने में ठीक समय पर एट द नीक ऑफ द टाइम दुर्भाषा मारती कैसे ब्रह्मवादी साधारण जिसको जो कर देंगे वही हो जाता था। आए देखते ही उन्होंने कहा आज हमारा परम सौभाग्य है आप जैसे ब्रह्म भक्ति यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, आज हमारे यहाँ अभी सुलभ प्रसाद आइए, अभी बना हुआ है हमारा द्वादशी का पारण हो जाएगा और मैं सब पारण कर दूंगा। ठीक है किंतु मेरे कुछ रिश्ते से चला गए हैं, जमुना में अभी जा रहा हूँ, पाटी में जमुना जी बह रहे हैं वहां पर मतदान है मतबन में और स्नान का कुछ रखा गए और ब्रह्म चिंता स्नान करते 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 ब्रह्म में चिंतन लगा दिया, भूल गए अपने को, समय हो गया 24 मिनट बाकी वो भी समय, अब वो प्रतीक्षा करेंगे अब आएंगे, देखते देखते 2-1 मिनट बाकी रह गए, अभी तक इसी आए नहीं, सोचा कि मुझे क्या करना चाहिए, ब्राह्मणों से पूछा मुझे क्या करना चाहिए, अब पारण यदि नहीं करेंगे तो हमारा एकादशी व्रत गड़बड़ हो जाएगा, और जैसे ब्राह्मण की हम आदर नहीं करते हैं उनको निमंत्रण किया है उनको प्रसाद पाया उन्हें अत्यंत पालन कर रहे तो ब्राह्मण ना ब्राह्मण का निरादर हो जाएगा, ब्राह्मण का निरादर करना उसी से नहीं है, मुझे क्या करना है, समय हो गया निरादर करना हो जाएगा, क्या करूं ब्राह्मणों के दिमाग में ये नहीं आया आगे क्या करना चाहिए, उत्तर नहीं दे छोटी जी के द्वादशी का पार और इधर ब्राह्मण पान मिलाकर ये तो बड़ा भारी संकट, उन्होंने अपने आप ही चिंतन किया ब्राह्मण का निरादर भी न हो और हमारा द्वादशी व्रत ये नष्ट न हो, इसलिए उन्होंने देखा मैंने संदेश जला एकादशी की थी इसलिए यदि जल ग्रहण कर लू तो खाना हो जाएगा और नहीं खाना भी होगा, इसलिए भगवान का चरणामृत जो था इसको मैं यदि पी लू तो इस विषय में आप लोगों की क्या राय है, कहा जो महाराज प्रिय सर्वोत्तम है आपने जो विचार किया है निर्जला से निर्जला का रहा नहीं, व्रत का उल्लंघन भी नहीं हुआ, ब्राह्मण का भी निरादर नहीं हुआ, ब्रह्मस्थी का उन्होंने एक बुरु चरणामृत का केवल पानी उन्होंने ग्रहण कर और इतने लोगों ने किया देखा, अरे तो बड़ा भाग्य अपने को भाग्य समझता है भाग्य से चला कर संबंध है, हमें निमंत्रण किया और हमारे आए नहीं तुमने खा लिया एकादशी का व्रत पालन कर लिया हमारा निरादर किया, अच्छा मैं इसका फल चखाता हूं तुमने हमारा जैसा किसी को देखा नहीं है, तुमने समझ लिया ये सभी ऋषि लोग ऐसे ही होते हैं, देखो मैं क्या करता हूं अपनी जटा उठाई और कहा कि तुम क्या बन जाओ जल्दी ही आग बन जाओ और उसको तुरंत जला दो, हमारा प्रभाव को देखे संसार वाले भी लिखे कि ब्रह्मवासियों को उल्लंघन नहीं करना चाहिए, किंतु एक बात थी कृत्या प्रति
शक्ति उनके तरफ में थी। तो हुआ क्या, भगवान ने देखा था पहले से ही चौबीसों घंटा में, चौबीसों घंटा ये हमारी सेवा में लगता है, अपने लिए कुछ ये विचार नहीं करता, अपने जीवन रक्षा के लिए भी कुछ नहीं देता। सुदर्शन चक्र को उन्होंने आदेश दिया बहुत पहले से ही, देखो ये हमारा ऐसा भक्त है, संपूर्ण रूप से अपने जीवन को हमारे ऊपर में समर्पित कर दिया, अपने जीवन और बचने रक्षा की कोई भी उपाय नहीं करता है, इसलिए हमको इसकी जीवन रक्षा करना है क्योंकि शरणागत है हमारा, इसलिए तुम अलक्षित रूप में इसके साथ साथ में रहना, यदि कोई विपत्ति आए तो जरूर उस विपत्ति को दूर कर देना। अभी तक तो कोई जरूरत नहीं पड़ी थी, आज जरूरत है, यह क्या निकली और शक्ति उनको मारने के लिए, जला देने के लिए उसी समय में वो सुदर्शन चक्र आए प्रकट होकर के और कृत्या को एक क्षण में जला करके भस्म कर दिया, एक सेकंड में जला और उसको जला करके ऋषि के तरफ में लपका। ऋषि बड़े जोर से भगे, त्रिभुवन में घुमाए, कई रक्षा ने जहां देखा और पीठ के निकट ही एकदम पहुंच ही गया, ऐसा भी है किंतु कुछ भगवान की मर्जी, उसको तो जला दिया। और सुदर्शन की यदि इच्छा हो एक सेकंड कोई बच रह सकता है, उनके समान कौन से प्रकार तो जलाया नहीं। अभी सब चीज को ये मालूम कर रहे हैं कि अब हमारे किस में लगा जलाया, साफ उनको वो हो रहा है, मर नहीं है, जला नहीं है। ब्रह्मा जी के पास में मेरी रक्षा करें, मेरी रक्षा करें, इस चक्र से दूर भागो। भगवान का भक्तों का विरोधी, तुम भगवान के भक्तों की महिमा नहीं जा सकता, सब भक्तों को ऐसा ही समझ दिया है। दुर्भगवान ने तो चक्र हमने भी काटे थी, उड़ा देंगे और तुम्हें भी तो खत्म करें, यहां से जल्दी से भगो, तुम्हारा गंध नहीं हम देखना चाहते। दौड़ कर चौमान से शंकर के आए, शंकर जी हमारी रक्षा करें, आप त्रिलोक की रक्षा करते हैं। उन्होंने अगर खबरदार दूर रखो, नहीं तो चक्र हमको भी जला करके भस्म कर देंगे, जल्दी भगो यहां से। और वो देखा कि किसके पास जाए, और विष्णु के पास में चले, नारायण के पास। हे नारायण, अपने चक्र सुदर्शन से मेरी रक्षा करें, मैं तेरी रक्षा नहीं कर सकता, हमने तो अपना हृदय भक्तों को दे दिया है, इसलिए हमारा जब मैं हूं ही नहीं तो मुझको अनुभूति नहीं है तुम जल रहे हो या मर रहे हो, क्या है कौन रक्षा करे, हमारा सब कुछ भक्तों को मैंने सौंप दिया है, इसलिए उसी के पास में जाऊं, हमारे यहां तुम्हारी रक्षा की। इस तरह से फिर क्या हुआ, इसके बाद में हम आरती के बाद में फिर ये प्रसंग को बतलाएंगे और इसकी शिक्षा क्या है जिसको भी अच्छी तरह से बतलाएंगे, आप लोग अच्छी तरह से समझ करके इसको शिक्षा को बताएंगे।
जय श्री राधा गोविंद देव की जय, जय जय श्री राधे, जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे, जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे, जय कृष्ण।
भक्ति के अस्त्र सुन रहे हैं। जब भगवान के पास में दुर्गा की गए, उन्होंने कहा कि हमारा तो हृदय ही नहीं है, मैंने अपना हृदय भक्तों को दे दिया। अस्वतंत्र विजयी भक्तों का पराधीन हूं और स्वतंत्र की अस्वतंत्र की नाय। मैंने क्या, मैंने तो अपने हृदय को दे दिया, किंतु भक्त हमको स्वतंत्र ही रखना चाहते हैं, वो अपने पर तंत्र नहीं रखना चाहते। इसलिए अस्वतंत्र की भांति, देखो तुमको चक्र ने पीछा किया, तुम भागे और सुख्यात भक्ति के रूप में उनको जलाने के लिए अमृत महाराज को दौड़ी, किंतु वे सब से मत नहीं, तुम्हारा हमारे प्रति विश्वास नहीं है, किंतु उनका विश्वास है। मृत्यु के लिए लोग डरते हैं, तुम डरते हो, हमारे भक्त लोग मृत्यु से नहीं डरते, मृत्यु बल्कि डरती है, मृत्यु भी डर जाती है उनके डर के मारे। देखो तुम ये समझो, तुमने समझा कि द्वादशी में उसने पालन कर दिया, तुमको वो निमंत्रण देकर के लिए तुम्हारा आना कर दिया, किंतु देखो एक बात, भक्त लोग को समझना बड़ा बड़ी कठिन होता है, उसने तुम्हारा निरादर नहीं किया, पानी पीना ये भोजन करना भी है और नहीं भोजन करना भी है, शास्त्रों में ही हमारी वाणी है, हमारी वाणी के अनुसार ने तुम्हारा आदर किया, पानी नहीं पिया उसने, कुछ नहीं खाया, और तुम कैसे हो, तुम भक्तों का चरित्र उनकी महिमा नहीं जानते हो। किंतु एक बात उन्होंने कहा, यह सब आपने, मैं तो आपका भक्त हूं, मैं ब्रह्मांड में ब्राह्मण हूं, आप ब्रह्मांड का देव हैं, फिर आपने अमृत में कोई गलती नहीं देखी, त्रुटि नहीं देखी और हमारे में ही त्रुटि देखी, उनमें क्यों नहीं, उनमें त्रुटि ने हमारा आदर नहीं किया, ब्रह्मांड का अनादर किया, ये आप उनमें त्रुटि नहीं दिखती है, जैसे ये तुमको वही समझाएगा, मैं तुमको इतना हमारे पास समय फुर्सत नहीं है, जाओ उसी के पास में जाओ, ये द्वादशी का महात्मा भी है या ब्राह्मण का महात्मा भी है, उनके पास में जाओ, उसको अच्छी तरह से समझा देगा, समझा तो क्या तुम्हारे समझ में नहीं आया, खास पत्थर तुम्हारे दिमाग में भरा नहीं है, कुछ नहीं समझते, द्वादशी का महात्मा बहुत कठिन, तुमसे भी अधिक जो ब्राह्मण एकादशी नहीं करता, जो द्वादशी का महत्व नहीं जानता है, भक्ति का महत्व नहीं जानता है, तो फिर वो ब्राह्मण कैसे, ब्राह्मण कैसे रहे, और भगवान हमारी महिमा तो नहीं जानता, हमारे भक्तों की महिमा नहीं जानता है, जाओ वहीं पर, यदि पैर में कांटा यदि चुभ जाए तो सिर से निकलेगा, तो मैं तो फिर हूं, और वो क्या है, हमारे चरण है, उनके चरणों से मैं चलता हूं, तो उनके चरण में तुम्हारा अपराध हो गया, कांटा लग गया है, मेरे प्रसन्न करने से नहीं निकलेगा, जाओ वहीं पर जाओ, भक्तों की नहीं मानता हूं, बस भगवान के आदेश से चले आए भूमंडल तक अम्बरीश के यहां, और भक्तों की नहीं मानते सकते, आज तक लेते हैं उनके चरणों में एकदम गिर, एक बरस तक जब तक ये दुबारा नहीं लौटे थे वहीं पर एक पैरों पर खड़े थे, हमारे लिए ब्राह्मण को इतना कष्ट हुआ, कुछ नहीं खाया न पिया, वो द्वादशी होती रही गई, इतने दिनों तक कुछ नहीं खाया उस हुए, और फिर जब वो आए, जब उनके चरणों में गिर गए, उन्होंने उनको चरणों से उठा लिया, आपको बहुत हमने कष्ट दिया, आज मैंने हमारी आंखें खोली, भगवान ने हमारी आंखें खोल दी, ये भक्तों की कैसी ऐसी महिमा, आज तक मैंने इस चीज को अनुभव नहीं किया था। मैं समझता जी मैं ब्रह्मवादी हूँ, जो कहूंगा वो हो जाएगा। तुमको साधारण सिंहस्थ भक्त मैंने समझा, वो भी साधारण सामान्य कोटि का भगवान की और आपकी इतनी महिमा मैंने नहीं सोचा। आप हम पर दया करें, आप हमारी रक्षा कीजिए। अभी चक्र हमारे पीछे लगा हुआ है, वो शायद इसीलिए नहीं जलाया कि आपने इच्छा की थी कि हमको जलाए नहीं, इसलिए ताप तो होता रहा, दुख कष्ट होता रहा। मैंने समझा दिया शरीर मेरा झुलस रहा है ताप, अब मरा तब मरा, अब मेरी रक्षा कीजिए। बस उन्होंने सौ स्तुति स्तोत्र सुनकर, यदि मैंने भक्ति की है भगवान की तो ये ब्राह्मण की रक्षा है, आप शांत हो जाएंगे। क्या मैंने तन मन वचन किसी प्रकार से मैंने भक्ति भगवान की थी और उससे आप प्रसन्न हैं, आप भगवान के स्वरूप हैं, तो इस ब्राह्मण की रक्षा कर दीजिए, इसकी रक्षा हो। जब इस प्रकार से कहना आरंभ किया तो सुदर्शन चतुर्जी एकदम शांत हो गए और अलक्षित होकर के फिर उनके ऊपर नहीं उनकी रक्षा करने लगे। तो इस तरह से ये भक्तों ये साधक हैं। भक्ति दो प्रकार की होती है, भक्ति वैसे तो अल्लाह को प्रकार की होने से भी ये बदला गया है, एक मर्यादा में होती है और एक मासूम की भक्ति होती है। शुद्ध भक्त लोग अनर्थों से रहित हो जाते हैं, कोई अनर्थ नहीं रहता, उनका सारा क्लेश दूर हो जाता है भक्ति के आचरण मात्र से ही। इसलिए भक्ति का प्रधान गुण है, यदि कोई भक्ति का आचरण करता है तो रूप में उनकी भांति समरण कीर्तनम विष्णु स्मरण भाव सेवन अर्चनम वंदनम दर्शन संतम आप श्रवण करता है, हरि कथा सुनता है, भगवान का चिंतन करता है और जो भक्तियां जो बदलाई गई है जो प्रहलाद महाराज ने कहा है, तो ऐसे जैसे भक्ति करता है तो भक्ति के प्रारंभ में ही उसके सारे दुख कष्ट संसार के जितने हैं सब दूर हो जाते हैं, क्योंकि भक्ति प्रथम अवस्था में ही क्लेश करनी है। भगवान का भजन कर रहा है उसके आत्मा में शांति नहीं है, प्रसन्नता नहीं है, तो इसका मतलब भक्ति नहीं कर रहा, कुछ गड़बड़ नहीं। कोई खूब खा रहा है, पेट भर नहीं रहा, तो समझे ये डाइन तुम्हारे में पिशाची तुम्हारे पेट के अंदर में चली गई है, वो पिशाची डाइन सब खा रही है, तुम नहीं खा, तुमको रोग हो गया है, ऐसा था। उसी प्रकार से भगवान की भक्ति करेंगे उसकी आत्मा प्रसन्न नहीं होगी, उसको त्याग दराज नहीं होगा, अनुभूति नहीं होगी और उसके दुख कष्ट नहीं मिल जाएंगे, ये कभी होगी। जब वो प्रसन्नता अम्बरीश मारा है ऐसे भक्ति जी सब उनको दर्शन उनकी रक्षा के लिए सब समय घूम रहे हैं, उनके लिए क्या कोई कष्ट है, कष्ट आने पर भी उसकी अनुभूति नहीं होती, इन लोगों को कष्ट ही नहीं है तो अनुभूति क्या क्या बात है। भक्त महाराज पर कष्ट है, अनुभव करते हैं, अभी पूर्ण रूप से अनर्थ नहीं गया है, इनकी पूर्ण रूप से ये सब खत्म हो गया है, क्लेशों का नाश हो गया। कितने प्रेम प्रकार के कष्ट हैं, एक होता है प्रारब्ध है, एक होता है अप्रारब्ध, एक होता है कूट, एक अविद्या, एक कर्म वासना, इनके सारे कष्ट नष्ट हो गए हैं। हमने जो जो कर्म किए हैं उन कर्मों का फल भोगने के लिए जो भगवान शरीर देते हैं इसको कहते हैं प्रारब्ध कर्म। हम अपने प्रारब्ध कर्म भोग करने के लिए बाध्य हैं, किंतु जहां भक्ति उदित हो गई तब प्रारब्ध कर्म भी। ब्रह्मज्ञानियों को अपने कर्मों का फल भोग करना पड़ेगा, अवश्य भोग करना पड़ेगा, किंतु भक्त लोग गुरु पदाचार्य गर्वेश नाम करेंगे तो उनके समानी अम्बरीश महाराज के समान उनके सारे अनर्थ पाप कूट भी अविद्या अप्रारब्ध कर्म जो बहुत से संग्रहित हैं कोटि कोटि जन्म में जो हमने पाप किया है तन से मन से वचन से वो तो दूर हो जाएंगे, किंतु प्रारब्ध कर्म को करना पड़ेगा। अपैश नाम स्मरण करते प्रारब्ध कर्म भी ये प्रारब्ध कर्म भी भक्त जीवित कैसे रहेगा भगवान की कृपा से कुछ उसमें ऐसा रख देते हैं ये भक्तों का शरीर रहे जो साधन भजन करे। इसलिए प्रारब्ध कर्म जी की क्लेशा जी शुभदा सब प्रकार के शुभ भक्तों के हृदय में आ जाते हैं। ये भक्ति भी जो प्रकार की बतला रहा था वो जो कोई पत्ता है तो पत्ते व्यक्ति वो आते हुए मूड़े ही आ जाते हैं पहले जब निकलते हैं तो ऊपर में रुखड़ा होता है और जब वो खिल जाते हैं पत्ते तो क्या हो जाते हैं बड़े कोमल निर्भर। कोई भी बरगद का देखिए कटहल का देखिए और कोई भी जो भी पत्ता देखे तो ऐसे ये पहले जब टिकड़ी हुई रहती है तो वो पहले दिखते ही है बैठी लगते मन नहीं लगता तो भी करेंगे गुरु जी का आदेश मान करके श्रवण कीर्तन स्नान पाप सेवन बंधन दर्द ये सब मन लगा करके करो मन लगता है तभी हरिनाम में मन नहीं लगता है तभी करो करते 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 हमारा कल्याण हो जाएगा। और जब वो खिल जाता है पत्ता तो क्या होता है बड़ा स्वीट कोमल पत्ता यह है रगन का भक्ति किसको कर बड़ी भक्ति किसको कर जब आपके स्वभाव में आपके हृदय में प्रीति नहीं है अनुराग नहीं है लोभ नहीं है भगवान के सेवा की छोटे से बातना नहीं है किंतु समझते हैं कि भगवान के नाम रूप इत्यादि कीर्तन इत्यादि से ही हमारा कल्याण तो मन लगने पर भी नहीं जब करते हैं तो ये बड़ी तो ये करना चाहिए गुरु पदार्थ है ना शुद्ध गुरु का पदार्थ है गुरु की सेवा और भगवान की कथाओं का स्मरण इत्यादि जितने हैं ये सबको हमको करना चाहिए और तब धीरे धीरे भगवान की कृपा से कई भगवान की लीला कथाएं सुन रहे हैं गोपियों का चरित्र सुन रहे हैं तो आया हाँ जो सुधा मैया जैसे हमको कृष्ण की सेवा मैं कृष्ण की मैया बन जाऊं मैं सीता बन जाऊं सेवा कभी कभी यही होता है गोपियों की सेवा देकर के हाँ मैं गोपी को करके कृष्ण की कैसी सेवा करता हूं इसको लोकमयी भक्ति करते तो भक्ति करने से धीरे 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 ऐसा हो जाएगा कि उसमें जितने प्रकार के सुख हो सकते हैं संसार में सहज सरल रूप में जीवन का निर्वाह हो कोई विघ्न बाधा उपस्थित नहीं होगी इस तरह से उसका जीवन और फिर उसका स्वरूप की उपलब्धि इत्यादि की चलती यहां तक मुक्ति से भी घृणा करने लग जाएगी मुक्ति का नाम भी सुनना नहीं चाहेंगे और अंत में कृष्ण को आकर्षण करने वाली या प्रेमा भक्ति हृदय ऐसे भक्ति के और पत्ते होते हैं कि कल संस्कृत में हमने बन जाए तो ये भक्ति करने से जरूर हो जाएगी। अम्बरीश महाराज ने ये सभी चीजें की उनका दुख नहीं था उनका दुख तो भगवान ही ने दूर कर दिया था वो अष्टकाली पीड़ाओं का चिंतन करते थे ब्रज में रह करके वो वृंदावन में राजस्थल में गए हैं कि नहीं जब बंधन में हैं और एक वर्ष में थे तो ब्रह्मचर्य की परिक्रमा की होगी कि नहीं जरूर की होगी कृष्ण की लीलाओं को सुना होगा परम बुद्धिमान थे इसलिए भागवत की कथा भी सुनी होगी और गोपियों की भक्ति भी सुनी होगी उनके अंदर में ये लालसा होगी उनकी सेवा इसलिए बहुत दुष्ट को सीखे थे। अभी चिंता तो नहीं है ये रति अवस्था को कहते हैं ये प्रेम का शुभ आभास है जैसे सूर्य उगने को होता है तो अंधकार दूर हो जाता है अपने आप और उसका आभास सुशोभित होने लगता है इसलिए प्रेमा भक्ति जो है वो वैकुंठ में ही होती है जगत में प्रेमा भक्ति नहीं होती यदि किसी को हो जाएगी तो वो पागल हो जाएगा पागल एकदम हो जाएगा सब समय कभी होएगा चिल्लाएगा जमीन पर पड़ेगा उसकी अद्भुत देवता लोग भी उसके भावों को नहीं समझते और वो देखो ये नौ प्रकार की जितनी प्रकार की भक्ति है ये करने लगे हुए थे इसलिए कुछ दिनों के बाद ही प्रेम इनका जो आभास था जो रति था भाव का वो प्रेरित करने और उस भाव को प्राप्त हुए हैं अपने चित्र के जी महाराज के कल पर तो कैसे गिरी कहते थे परमशिष थे हम लोगों की शिक्षा देने के लिए वो कुछ लीलाएं उन्होंने की वो भी भगवान की इच्छा से चित्रकेतु महाराज पहले जन्म में थे तो उनकी लाखों स्त्रियां थी लाखों वर्ष की आयु थी किसी से पुत्र नहीं हुआ बड़े दुखी थी एक दिन कौन मिलती अंगिरा ऋषि वहां पर उनके चरणों को धो करके उनकी आरती उतारी बोले आज हमारा सौभाग्य है आप जैसे संसार उन्होंने कहा ये स्थिति है तो कुशल है सब कुशल है हमको पृथ्वी का राज्य मिला है हमारी सुंदर से सुंदर एक एक सुंदर स्त्रियां है राज्य खजाना पूरा है बस एक ही चीज का टोटा है वह टोटा क्या हमें कोई संतान नहीं इतनी रानी मुझे भी आप समझ रहे आप एक संतान दी उन्होंने दे संतान से कोई सुखी नहीं होता दिल्ली का जो जो
लड्डू
लड्डू खाया वो भी पचता है जो नहीं खाया वो भी पचता है तो तुमको संतान नहीं है तुम भगवान का भजन करो तुम्हारे देखता हूं कर्म में निर्वाद में कोई पुत्र नहीं है एक जन्म नहीं कर दिया नहीं है आप कर सकते हैं आप समझ हैं पाओ कुछ में नहीं चाहता हमको एक पुत्र हो जाए मानेगा नहीं अच्छा तब तो नहीं मानता तो ठीक है जाओ ये फल उनको अपनी पत्नी को दे देना है और इसे तुमको पुत्र होगा किंतु होगा हर्ष और दुख कर हर्ष और शोक हर्ष मैंने आनंद दाय और शोक मैंने दुख दुखदाय उनके समझ में नहीं आया कि ये क्या ऋषि का है उन्होंने सोचा कि जब लड़का हमारी हमारा आदेश नहीं मानेगा बहुत संत होगा तो मैं जन्म होने के बाद ही मैं इसको राज्य इत्यादि संभाल करके मैं तो बांधने से चला जाऊंगा हमारी ये आदेश पालन करे ना करे कोई बात नहीं अब वो ऋषि क्या करते हैं देखा जो है तो लड़का तो नहीं खुद ही गर्भ में चले गए अपने शरीर को कहीं अलग से रूप से रख दिया और अपना स्वरूप में उनके अंदर में प्रवेश कर गए उसके विपरीत के घर में फिर समय पर बेटा हुआ चांद जैसा उखड़ा बड़ा सुंदर था अब राजा की पूर्ण आसक्ति सब जगह से हट करके उस पुत्र में आ गए अब बस एक रानी और एक राजा और एक चौबीस घंटा राज्य पांच सौ सप्ताह सब छोड़ दिया और जो उनके कर्तव्य थे वो सब छोड़ दिए बस बच्चे की सेवा में लगा रहता कभी मुझे लेता कभी कुछ करता कुछ करता अब वो लड़का बड़ा सुंदर वो पांच वर्ष का हुआ रानियां जो थी एक तो जिसको हुआ था वो तो बड़ी सुखी है और दूसरी जो हजारों रानियां थी उन्होंने सोचा कि हमारे दुखों का कारण यही एकमात्र पुत्र है जब एक पुत्र नहीं था तो सबको संभाव से राजा आदर करता था अब तो अपनी नौकरानियों की भांति साबुन तेल इत्यादि की भी जरूरत नहीं पूछता कुछ भी नहीं सुनता है कभी देखता है कि नहीं कभी जो हम लोग हैं नौकरानियों को भी पूछता है कि हम लोगों को नहीं पूछता है तो हम लोग काम बना लें ये जो हमारा आदर नहीं करता है वही उनके हृदय में जाने लगा उन्होंने एक मौका पा करके दूध में काल को बीज मिला करके और उसको दे दिया और उसका भी साथ मर गया रानी एकदम छाती पीटने लगी और उस मृतक के पास में बैठ करके चिल्लाने लगी रोने लगी और बेहोश हो गई राम महाराज सुने वो भी आए वो भी मृतक होकर के